कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन से विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, जो कुछ भी आज हम अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, हम उसे समझ सकें और अपने जीवन में उसे उतारने पाएं। इस समय फिर से एक बार हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराशाओं में हैं। प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें ताकि वे भी आज की इस वचन के द्वारा आप में होकर सामर्थ को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मूसा की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने यहोशू को कमान सौंपी कि वह इसराइल को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर ने उसे ढाढ़स बंधाया और प्रतिज्ञा की कि वह उसके साथ वैसे ही रहेगा जैसे मूसा के साथ रहता था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और यहोशू की पुस्तक उसके एक अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, देखते हैं कि ये ढाई गोत्र अर्थात आधे गोत्र यर्दन के पूर्वी तट पर ही बस गए थे और हम उनका धर्म त्याग अति शीघ्र देखेंगे। जब वे यर्दन के पूर्वी तट पर पहुंचे तब मूसा जीवित था। गिनती की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1, 2 और 5 पद में उन्होंने मूसा से निवेदन किया कि उन्हें वहीं बसने दिया जाए। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार न ले चल। यह उन ढाई गोत्रों का निवेदन था। वे अनुचित स्थान की याचना कर रहे थे। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है लौटकर इसके अधिकारी होगे। मेरे प्रिय मित्रों, यहोशू उन्हें मूसा की शर्त स्मरण करवा रहा था। मूसा ने उन्हें यर्दन के पूर्वी तट पर बसने की अनुमति तो दे दी थी, परंतु शर्त यह रखी थी कि उनकी सेना अन्य गोत्रों के साथ यर्दन पार जाएगी और देश पर अधिकार करने में उनकी सहायता करेगी, और वे ऐसा ही करने को तैयार थे। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा हुआ है, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाब बांधे रह। मित्रों, संभवतः आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यर्दन के पूर्वी क्षेत्र में बस जाने में क्या बुराई थी? क्या यर्दन पार करना अति आवश्यक था? क्या यर्दन का पूर्वी क्षेत्र प्रतिज्ञा के देश का भाग नहीं था? ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम यर्दन पार करने की वृतांत धर्मशास्त्र में देखें और हम शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। मेरे मित्रों, यर्दन पार करना प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। किसी भी स्थिति में यह हमारी शारीरिक मृत्यु का संकेत देता है। हम गीत गाते हैं, यर्दन के तूफानी किनारे पर खड़ा होता हूँ। सबसे पहले तो यह जान ले कि यर्दन तूफानी नदी नहीं है और न ही आप और मैं तूफानी किनारों पर खड़े हैं। केवल मसीह यीशु क्रूस पर लटकाया गया और कीलों से ठोका गया था। उसी ने पाप के दंड के तूफान झेले थे। दंड के तूफान जब उस पर गिरे तब हम पर भी गिरे। यर्दन शोधन का प्रतीक है और मसीह यीशु की मृत्यु हमारे शोधन के निमित्त थी। मेरे मित्रों, न्यायों की पुस्तक से हमें पता चलता है कि इन ढाई गोत्रों ने यर्दन पूर्व में बसकर बहुत बड़ी गलती की थी। प्रभु यीशु यर्दन पार करके वहां आया था तब ये लोग सुअर पालते थे। उन्होंने यर्दन के अनुचित तट पर अनुचित जीवन आरंभ कर दिया था। आज अनेक विश्वासी कथित सुअर के व्यापार में हैं और निराशा से पूर्ण हैं। उन्हें प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान द्वारा प्रदान विश्राम में प्रवेश करना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय दो से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। इसका विषय है भेदियों का राहाब से संपर्क। मित्रों, यहाँ पर एक स्त्री दृश्य में आती है जो एक वेश्या है, उसका नाम राहाब है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वह नए नियम में विश्वास के नायकों में गिनी गई है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मेरे मित्रों, मैं इब्रानियों अध्याय 11 को विश्वास के नायकों का अभिलेख नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें उनके मनुष्यत्व पर बल दिया गया है और मैं विश्वास पर बल देना चाहता हूँ। वहाँ जिन स्त्री पुरुषों के नाम दिए गए हैं वे उदाहरण हैं कि जीवन की सब परिस्थितियों में विश्वास ने हर युग में क्या काम मनुष्यों से करवाया। हमारे लिए तो इसका अर्थ है कि विश्वास द्वारा हम भी ऐसे काम कर सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जैसे कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। दूसरे अचंभे की बात यह है कि राहाब प्रभु यीशु की वंशावली में है। नया नियम यीशु की वंशावली से आरंभ होता है और वहां राहाब का नाम आता है। वह यीशु की वंशावली में कैसे आई? विश्वास के कारण। आप स्वयं देख सकते हैं कि यह अध्याय उस सराहनीय स्त्री का उल्लेख कर रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं यहोशू 2 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। ध्यान दीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे कि दो भेदिये भेजे गए। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने फिर वही भूल की। पहले उन्होंने भेदियों को इस उद्देश्य से भेजा था कि वे पता लगाएं कि उस देश को जीतना संभव होगा या नहीं। इस बार भेदियों को भेजने का उद्देश्य भिन्न था। वे वहां प्रवेश का स्थान देखने गए थे। अतः आप देख रहे हैं कि इस बार उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। यरीहो वासी राहाब ने इन भेदियों के लिए अपना द्वार खोला। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 2 अध्याय उसके 2-7 पद में लिखा हुआ है, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इसराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इन भेदियों को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इस प्रकार अपनी जान संकट में डाली। उसे अपना जीवन इस प्रकार संकट में डालने की क्या आवश्यकता थी? उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। वह तो ऐसे व्यवसाय में थी जहां सब चलता है। उसने अपने ही लोगों से झूठ बोलकर बैरियों को क्यों बचाया? मेरे मित्रों, इसका उत्तर खोजने से पूर्व मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या राहाब के इस काम को उचित ठहराया जा सकता है? क्योंकि धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर की संतान को अपने अधिकारियों और हम पर नियुक्त शासकों के अधिकार का सम्मान करना है। राहाब ने ऐसा नहीं किया था। हम उसे परमेश्वर की संतान नहीं कह सकते हैं। कम से कम इस अनुभव के बाद कुछ समय तक एक और उत्तर है जिसे मैं आज हमारे संदर्भ में अर्थपूर्ण समझता हूँ। विश्वासियों को अधिकारियों और शासकों का आज्ञा पालन करना है। एक विश्वासी को देश का सबसे बड़ा नियम पालक नागरिक होना है, परंतु यदि नियम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो तो विश्वासी के पास परमेश्वर की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पत्रस और यूहन्ना का यही चुनाव था जब महासभा ने उन्हें मसीह यीशु का नाम लेने से मना किया था। हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, परंतु पत्रस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। मेरे मित्रों, आज भी विश्वासी को मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की बात मानना है। अब राहाब ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे कि उसने वैरियों को बचाने के लिए झूठ क्यों बोला। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, यहोशू 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि वह कनान वासियों के मन का भेद प्रकट करती है। उनमें चर्चा थी कि एक विशाल जाति उनका देश जीतने आई है। उन्हें डर था कि वे उनसे हार न जाएं। जनता घबराई हुई थी। राहाब भेदियों को यही बात बताती है। मेरे विचार में उसकी स्थिति भी ऐसी ही थी। उसे लोगों से समाचार मिलता था, अतः वह अपने लोगों की मनोदशा जान गई थी कि वे इसराइल के आगमन से भयभीत थे। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू 2 अध्याय उसके 10 पद में कि क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह क्या कहती है। हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। यह कब हुआ था? 40 वर्ष पूर्व। इन 40 वर्षों से परमेश्वर कनान वासियों को उसके निकट आने का अवसर दे रहा था। यह हम कैसे कह सकते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके वंशज 400 वर्ष तक पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में पाते हैं, यह बात इस समय से 420 वर्ष पुरानी थी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कनान वासियों को 420 वर्ष का समय दिया कि वे मन फिराएं और उसके निकट आ जाएं। मेरे मित्रों, आलोचकों का कहना है कि पुराने नियम का परमेश्वर सताने हारा परमेश्वर है। वह निर्दयी एवं पाशविक है। परमेश्वर ने उन्हें 420 वर्ष का समय दिया कि वे अपने अधर्म से मन फिराएं। मित्रों, मेरे विचार में यह पर्याप्त से कहीं अधिक समय था। इसके बाद भी परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष और दिए और सुनिश्चित किया कि वे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के बारे में सुने कि उसने इसराइल को कैसे मिस्र से छुड़ाया। परमेश्वर उस मानव समुदाय को नष्ट नहीं करता है जिसने उसके विषय में नहीं सुना। उसने उन्हें बहुत समय दिया कि उसकी ओर फिरें। अतः आलोचकों से मेरा प्रश्न है, आपके विचार में परमेश्वर उन्हें कितना और समय देता? मेरे मित्रों, नए नियम में परमेश्वर बदला नहीं है। उसने स्पष्ट कहा है कि प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वाले नरक जाएंगे। क्या आपको इस आधुनिक समाज में यह सुनकर अचंभा होता है? क्योंकि आप तो नरक के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। जब परमेश्वर दंड देता है तब मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दयालु और दीन मनुष्य एक और खड़े होंगे और कहेंगे परमेश्वर को उन्हें कुछ समय और देना था, कुछ समय और। मेरे मित्रों, 2000 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर धीरजवंत है, वह क्रोध करने में विलंब करता है, वह दयालु है। और कितना समय आप चाहते हैं कि वह हमें दे? वह संसार को बहुत समय दे रहा है कि मसीह की ओर फिरें। राहाब ने कहा, यह सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया देखिए। यहोशू 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे मित्रों, उन्होंने ही नहीं, वे यह भी जानते थे कि जो उन्होंने सुना वह सच है, फिर भी वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। आज बहुत से लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मरकर दफन किए जाने के बाद फिर से 3रे दिन जी उठा है और वह एक ऐतिहासिक तथ्य है, परंतु फिर भी उन्होंने उद्धार नहीं पाया। आपको उद्धार किससे प्राप्त होता है? प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से उद्धार प्राप्त होता है, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने से। मेरे मित्रों, आज भी आपके पास मौका है कि प्रभु के पास आ जाएं, अन्यथा नाश अर्थात विनाश निकट है। राहाब ने यही नहीं कहा, आगे देखिए यहोशू 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से वर्ताव करेंगे। उसने विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के आधार पर काम भी किया, और यही कारण था कि उसने वैरियों को बचाने में अपनी जान संकट में डाली। उसने सुना, विश्वास किया और विश्वास के आधार पर काम भी किया। मेरे मित्रों, यह उद्धार है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार की मसीह ने आपके लिए क्या किया है, तो आपको इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में ही नहीं सुनना है, आपको मसीह यीशु में विश्वास करना है। राहाब ने विश्वास किया था कि परमेश्वर उन्हें वह देश दे देगा, वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की ओर फिरी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मेरे मित्रों, भेदियों ने उसके घर में उपस्थित सब सदस्यों को आक्रमण के समय सुरक्षित छोड़ देने का वचन दिया था। हम यहोशू 2 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि यरीहो का राजा परमेश्वर की ओर मन फिरा लेता तो वह भी बच जाता। सत्य तो यह है कि संपूर्ण नगर बच जाता यदि वे परमेश्वर के पास आ जाते और उस पर विश्वास करते। अब इस अध्याय का अंतिम पद देखें, जो भेदियों की जानकारी है। यहोशू 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से कहा कि निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। मेरे मित्रों, इन भेदियों ने जो जानकारी दी वह उस जानकारी से सर्वथा भिन्न थी जो 40 वर्ष पूर्व के भेदिये लाए थे। अब प्रश्न यह नहीं था कि शहर में प्रवेश करें या ना करें, वे निश्चय ही प्रवेश करेंगे। उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं, यह समाचार उन्हें राहाब से मिला था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो वासी सब घबराए हुए थे और इस बात का समाचार राहाब के द्वारा उन्हें मिला, और तब वे यहोशू के पास जाकर इन सारी बातों को बताते हैं कि सारा नगर या सारा देश डरा हुआ है और निश्चय ही परमेश्वर हमें विजय देगा। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, अर्थात अपना जगह देते हैं, तो वह हमारे जीवन को बलवंत और जयवंत बनाता है। यहाँ पर इसराइलियों को परमेश्वर ने वायदा दिया कि वह उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा और उनसे यह भी शर्त रखा गया कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और वहां के रहने वालों को नाश करेंगे। और तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे परमेश्वर अपने कार्य के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ाता है और वे आगे बढ़ते हुए इस स्थान तक आ पहुंचे हैं। अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मेरे मित्रों, क्या हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन जी रहे हैं, या हम परमेश्वर के दिए हुए मौकों का हम अनादर कर रहे हैं? जिस प्रकार से परमेश्वर ने कनान वासियों को 400 साल और 420 साल का समय दिया कि वे परमेश्वर की ओर मन फिराए, लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया और अंततः परमेश्वर को उन्हें नाश करना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और समय दे? मित्रों, यही एक समय है कि आप अपने मन को फिरा लें। हो सकता है कि कल का समय हम न देख पाएं। हमारे पापमय जीवन से हम अपने मन को फेर कर परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, उससे क्षमा मांगे, अपने जीवन का पश्चाताप करें और होने दे कि हम उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय ही वह आपको उद्धार देता है। मेरे मित्रों, निर्णय आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। राहब जो एक वेश्या थी, उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर लिया था और अपने जीवन को संकट में डालकर भी उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया और उसका जीवन, उसका परिवार बच गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन और आपका परिवार बच जाए? यदि हाँ, तो आज ही प्रभु को अपने जीवन में आने दें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उठा।
मुझको उठा।